अचानक जिनी के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर प्रिया लुट गई और वो बहुत घबरा गई। जिनी प्रेग्नेंट थी और उसे कहीं ना कहीं उसके चिल्लाने की वजह समझ आ रही थी। प्रेगनेंसी में ये सब चीज़ें नॉर्मल होती हैं। प्रियल ने घबराते हुए कहा, क्या हुआ जिनी, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बोलो, मैं ला देती हूँ। जिनी दर्द से चिल्लाई, वो पसीने से तर बतर थी। उसने कराते हुए कहा, प्रियल मैं मुझे किसी और चीज़ की नहीं, एक डॉक्टर की ज़रूरत है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज़ प्रियल मुझे हॉस्पिटल ले चलो, निक बुलाओ। जिनी ने जैसे तैसे अपने शब्दों को पूरा किया। प्रियल ने कहा, लेकिन जिनी मैं तुम्हें ऐसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती, तुम टेंशन मत लो, तुम लेट जाओ, मैं उसे कॉल करती हूँ, शायद ये फॉल्स लेबर पेन है, वो बस आता ही होगा। प्रियल प्लीज़, जिनी ने कहा। प्रियल ने निक को कॉल किया तो निक सो चुका था। मोबाइल की रिंग की आवाज़ सुनकर निक उठा तो उसने देखा कि प्रियल उसे कॉल कर रही थी। हाँ अब बड़ी याद आ रही है ऐसी मेरी, अब रहो ऐसे ही। उसने बिना कॉल पिक किए ही उसका फ़ोन कट करके फ़ोन को ऑफ करके वापस सो गया। जिनी की बिगड़ती हालत देख प्रियल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। प्रियल ने निक को वापस कॉल किया तो उसका फ़ोन बंद आ रहा था। प्रियल ने गुस्से में कहा, उस निक के बड़े ने अपना फ़ोन ऑफ कर दिया, पता नहीं समझता क्या है खुद को, मन तो कर रहा है उसके बाल पकड़कर घसीटते हुए यहाँ लाऊं। जिनी ने चिल्लाते हुए कहा, तुम अपने अरमान बाद में पूरे कर लेना, अभी मुझे उसकी ज़रूरत है, उसे यहाँ लाओ या फिर मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो। प्रियल ने कहा, प्लीज़ जिनी तुम 5 मिनट रुको बस, मैं यूं गई और यूं उसे लेकर आई। जिनी ने कहा, ओके लेकिन जल्दी करना, मुझसे अब सहन नहीं हो रहा यार। जिनी का दर्द बढ़ता जा रहा था। प्रियल जल्दी से भागकर पास वाले फ्लैट में गई और जोर जोर से दरवाज़ा पीटने लगी। प्रियल ने बड़बड़ाते हुए कहा, वो मुझसे नाराज़ है, गलती भी तो मेरी थी, मुझे सर्जरी नहीं करानी चाहिए थी, अगर इन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला तो मैं अकेले सब कैसे करूँगी। प्रियल फिर से दरवाज़ा पीटने लगी, निक 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 डोर ओपन कीजिए ना, इट्स अर्जेंट, निक प्लीज़। दरवाज़ा पीटने की आवाज़ सुनकर निक जाग चुका था। बाहर उसने प्रियल की आवाज़ सुनी तो वो दरवाजे की दूसरी तरफ खड़ा था। निक ने कहा, जाइए मिस शर्मा, मैं नहीं खोलने वाला, पता नहीं कब आप मुझे चैन से सोने देंगी। प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए ना निक, जिनी की तबीयत बहुत ख़राब है, आप आकर देखिए ना। प्रियल की बात सुनकर निक ने जल्दी से दरवाज़ा खोला और भागकर जिनी के पास गया। प्रियल उसके पीछे भागकर गई। निक ने कहा, पहले नहीं बता सकती थी क्या, उसकी मेडिसिन्स कहाँ हैं, तुमने पूछा उससे? प्रियल ने कहा, निक शायद जिनी का बेबी होने वाला है तो हमें उसे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। बाहर कूड़ा लगा है गुड़िया, कैसे लेकर जाएंगे? तुम अलमारी से मेरा रेड बैग लेकर आओ, मैं जिनी को देखता हूँ। निक दौड़कर जिनी के पास गया तो वो पसीने से तरबतर हो रही थी और दर्द से चिल्ला रही थी। जिनी ने कहा, अच्छा हुआ निक तुम आ गए, प्लीज़ कुछ कर ना, अब मुझसे और सहन नहीं हो रहा, प्लीज़ रॉन को बुला दो। निक ने कहा, देखो जिनी रॉन तो नहीं आ सकता, लेकिन जो करना है अब मुझे ही करना पड़ेगा, कूड़ी की वजह से हम एम्बुलेंस नहीं बुला सकते और हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम कूड़ा हटने का वेट करें, प्लीज़ जिनी आपको ऑपरेट करना, प्रियल अभी बैग लाती ही होगी, उसमें कुछ इक्विपमेंट्स हैं जो शायद हमारी हेल्प कर सकें। प्रियल जल्दी से वो बैग लेकर वहाँ पर आई। निक ने कहा, खोलो इसे और जो मैं बोलूँ वही करती रहना। प्रियल ने कहा, लेकिन मैं आपकी बातों में मानूँ? जिनी ने चिल्लाकर कहा, तुम दोनों फिर झगड़ा करना शुरू हो गए, प्लीज़ अब तो मत झगड़ा करो, मैं नहीं चाहती कि मेरा बेबी इस दुनिया में आए तो तुम दोनों को लड़ते झगड़ते देखे। निक और प्रियल ने एक साथ कहा, ओके। प्रियल ने पूछा, आपने इंजीनियरिंग की है क्या? अगर हाँ तो फिर आप भी इडियट्स के रिकॉर्ड की तरह डिलीवरी करवा सकते हो। शट अप प्रियल, मैंने MBBS किया है तो मुझे इंजीनियरिंग करने की क्या ज़रूरत है, और बेबी की डिलीवरी कराने के लिए डॉक्टर होना ज़रूरी है, ना कि एक इंजीनियर, पता नहीं क्या बकवास करती रहती है। प्रियल ने पूछा, मैं वेट रूम क्लीनर लाऊं? निक ने इधर उधर देखा और बोला, लेकिन रूम को क्लीन है, वो भी इडियट्स में। जिनी ने प्रियल की बात काटकर बोला, प्लीज़ निक तुम इसे चुप करवा दो, इसकी बात सुनकर मेरे कानों में भी दर्द होने लगा। निक ने ग्लव्स पहनते हुए बोला, इसके बाद अगर अपने मुंह से एक शब्द भी निकाला तो खिड़की से बाहर फेंक दूंगा। निक जिनी की डिलीवरी की पूरी प्रिपरेशन कर चुका था। निक ने एक छोटा सा सर्जिकल नाइफ उठाया ही था कि तभी प्रियल जोर से चिल्लाई। निक ने आंखें दिखाते हुए पूछा, अब क्या हुआ? प्रियल ने कहा, मुझे डर लग रहा है, आप ऑल इज़ वेल बोलिए ना। निक ने कहा, इस बात पर तो तुम्हें इस रूम से बाहर निकालना बनता है। नहीं, प्रियल ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि निक प्रियल को ज़बरदस्ती अपने कंधे पर उठाकर दूसरे रूम में ले गया और दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। प्रियल ने दरवाज़ा पीटते हुए कहा, आप बहुत बुरे हो, बाहर निकालो मुझे। देखो इतना टाइम नहीं है कि तुम्हारी बकवास भी सुनूं और जिनी को भी हैंडल करूं। लिसन, डिलीवरी तो मैं करवा दूंगा, तब तक एक काम करो, मिस्टर मुखर्जी को कॉल करके एक एम्बुलेंस का अरेंजमेंट करवाओ ताकि बेबी के पैदा होने के बाद हम उसे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर सकें, और हाँ मूवीज़ थोड़ी कम देखा करो, कहकर निक वहाँ से जिनी के पास चला गया। प्रियल उसके जाने के बाद कमरे में इधर उधर चहलकदमी कर रही थी। यार पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इनको, एक तो सवाल क्या पूछ लिए बाहर निकाल दिया सीधे, अब मुझे क्या पता, मैं कोई डॉक्टर थोड़ी ना हूँ, एक तो मदद करो ऊपर से सिर पर चढ़ने को तैयार रहते हैं। अरे हाँ याद आया, मिस्टर मुखर्जी को भी तो कॉल करना था। प्रियल मिस्टर मुखर्जी को कॉल करके हॉस्पिटल में जीनी के लिए सारी अरेंजमेंट करवा चुकी थी। लगभग एक घंटे बाद प्रियल को बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी, तब तक नीचे एम्बुलेंस भी आ चुकी थी। प्रियल ने जोर जोर से दरवाजा खटखटाते हुए कहा, प्लीज अब तो डोर खोल दो निक, मुझे भी बेबी को देखना है, ऐसा मत करो ना प्लीज निक। वहीं अंदर रूम में निक ने बेबी को अपने हाथों में ले रखा था, जबकि जीनी मुस्कुराते हुए उन दोनों को देख रही थी। निक ने नम आंखों से कहा, इट्स अ बेबी गर्ल, वेलकम बेबी, मे गॉड ऑलवेज ब्लेस यू। जीनी ने कहा, निक मुझे भी दिखाओ ना, मुझे देखना है ये किसकी जैसी लगती है। निक ने हंसते हुए कहा, जीनी इसे पैदा हुए मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं हुए और तुम इसकी शक्ल मिला रही हो, पता है ना बेबीज की शक्ल बदलती रहती है और मैं इसे तुम्हें बिल्कुल नहीं देने वाला। प्लीज यार निक ऐसा मत कर, रॉन को भी तो कॉल करना है और मत भूलो तुमने प्रियल को भी अंदर रूम में लॉक कर दिया था, बेचारी परेशान हो रही होगी ना। निक ने कहा, अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था, तुम इसे पकड़ो, मैं प्रियल को अभी बुला कर लाता हूँ। निक बेबी को जीनी के हाथों में थमाकर वहां से जाने ही लगा था कि अचानक वापस मुड़कर जीनी के पास आया। निक ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, तुम ठीक तो हो ना, बहुत दर्द हुआ होगा ना। जीनी ने कहा, हाँ बहुत, लेकिन आज पावती आंटी यहाँ होती तो उन्हें भी तुम पर बहुत प्राउड फील होता, तुम एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हो। मॉम होती तो मुझे ये सब नहीं करना पड़ता, मैं भी इस प्रोफेशन में जाना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे ये जॉब छोड़नी पड़ेगी। मैंने हमेशा ही सोचा था कि जब मेरे बच्चे हो जाएंगे तब मैं ये सब कुछ छोड़ दूंगा और उनके साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करूंगा, पता है ना हमारे काम में जान जाने का रिस्क बना रहता है, लेकिन अब झूठे सपने देखकर कोई फायदा नहीं है। जीनी ने कहा, तुमने तो मेडिकल की स्टडी की है, क्या सच में कुछ नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन उसके लिए मुझे उसकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री देखनी होगी। डोंट वरी, मैं कोई ना कोई तरीका निकाल ही लूंगा, चलो अब उसे भी बाहर निकाला जाए।
निक वहां से दूसरे रूम में गया और दरवाजा खोलकर प्रियल को बाहर निकाला। आई हेट यू, प्रियल ने कहा और दौड़कर जिनी के कमरे में चली गई। निक ने हंसते हुए कहा, आई लव यू टू। प्रियल अंदर जिनी के रूम में गई तो जिनी ने बेबी को अपने हाथ में ले रखा था और वो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। निक भी उसके पीछे पीछे वहां आ गया। जब प्रियल ने जिनी और बेबी को एक साथ देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। निक और जिनी ने देखा कि प्रियल रो रही थी। जिनी ने कहा, तुम पागल हो क्या, ये तुम्हारी भी बेबी है, आ जाओ इसे लेकर देखो। प्रियल ने कहा, मैं इसे पकड़ लूंगी क्या, ये बहुत छोटी है। निक ने कहा, लाओ मैं हेल्प करता हूँ। जिनी तुम्हें ठीक लग रहा है ना, हम पहले हॉस्पिटल चलते हैं, नीचे एम्बुलेंस आ चुकी है, वैसे तो सब ठीक है लेकिन मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। जिनी ने कहा, अच्छा ठीक है चलेंगे, लेकिन पहले मैं रॉन को कॉल करके तो बता दूं, उसे तो पता भी नहीं कि उसकी बेबी इस दुनिया में आ चुकी है। जिनी ने रॉन को कॉल करके बेबी के होने के बारे में बताया तो उसे बहुत खुशी हुई और वो जल्द से जल्द वहां से निकलने की तैयारी करने लगा। उधर निक और प्रियल ने साथ में बेबी को पकड़ रखा था। निक ने कहा, कितनी क्यूट है ना। प्रियल ने कहा, हाँ देखना हमारे बच्चे भी बहुत क्यूट होंगे। प्रियल ने बिना सोचे समझे निक को बोल तो दिया, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि अनजाने में उसने क्या बोल दिया तो उसे बहुत बुरा लगा और फिर से उसकी आंखों में आंसू आ गए। निक ने प्रियल को सहलाया और कहा, डोंट वरी गुड़िया, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा, तुम अपनी मेडिकल हिस्ट्री मुझे दिखाना, अगर पॉसिबल हुआ तो हम सर्जरी को रिवर्स करवा देंगे। प्रियल ने हैरानी से कहा, मैं कुछ समझी नहीं। निक ने कहा, इस तरह की सर्जरी को जब चाहे तब रिवर्स करवाया जा सकता है, एक बार मैं तुम्हारे डॉक्टर से मिल लूं, फिर जब हम जब यूएसए चलेंगे तो इस बारे में किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे। अब रोना बंद करो वरना बेबी भी कहेगी कैसी रोतलू लड़की है। आई थिंक अब हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए, प्रियल ने कहा। निक ने हामी भरी और प्रियल के साथ जिनी को हॉस्पिटल लेकर गए। हॉस्पिटल से रिपोर्ट्स क्लियर होने के बाद जिनी को वापस घर लाया गया। चैप्टर 2। जैन फुलवा को जिनी के पापा के पास छोड़कर यूएसए से वापस आ चुका था। जैन और आलिया में एक अलग ही खामोशी छाई हुई थी। निक उन दोनों के बीच की दूरी को अच्छी तरह से समझ रहा था। उसने प्रियल को बहाने से रूम में आने को कहा ताकि इस बारे में कुछ हो सके। निक ने कहा, तुम्हारी आलिया से कोई बात हुई? मुझे नहीं लगता इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक है। प्रियल ने कहा, सॉरी निक, हम दोनों के बीच में ही इतनी दूरियां हैं कि मुझे दूसरों की दूरियां अब दिखाई ही नहीं देती, फिर भी इन दोनों के बीच दूरियां मेरी वजह से आई हैं, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ये दोनों एक हो जाएं। एक बात पूछूं, तुमने गुस्से में मुझसे डिवोर्स मांगा था ना? प्रियल ने कहा, हाँ उस वक्त गुस्से में मांगा था, लेकिन अब थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोच रही हूँ। याद है 2 दिन पहले आपने कहा था कि जब हम यूएसए जाएंगे तब आप मुझे किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाकर जाएंगे? लेकिन निक, मैं यूएसए जाऊंगी, मेरी जॉब है यहाँ पर और मेरा यहाँ सब कुछ अच्छे से सेटल है। निक ने कहा, तो क्या हुआ, जॉब तो वहाँ पर भी मिल सकती है। हाँ हो सकता है एक बार के लिए तुम्हें इतनी हाई पोस्ट ना मिले, लेकिन फिर भी
मैंने तुम्हें काम करने से कभी मना नहीं किया, तुम पैसों की संभाल लेना।
नहीं निक, मैंने 3 साल दिए हैं इस जॉब को, क्या आप मेरे लिए अपना सब कुछ छोड़कर इंडिया में सेटल हो सकते हैं?
निक ने कहा। कैसी बात कर रही हो तुम प्रियल, तुमने 3 साल दिए हैं तो मैंने 8 साल दिए हैं।
यूएसए में मेरा घर, होटल, बिजनेस सब कुछ वहाँ पर है, मैं कैसे छोड़ सकता हूँ?
माना मेरी मॉम आज मेरे साथ नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनकी आखिरी निशानी अपने घर को छोड़ दूँ। मैंने पूरा अपार्टमेंट खरीदकर पैटर्न बनाया था, लेकिन मेरे घर का हिस्सा आज भी वही है जो कभी हमारा घर हुआ करता था। प्लीज़ ऐसे मत करो, ऐसी शर्त मत रखो जो मैं कभी पूरी ही ना कर पाऊँ।
जहाँ निक आलिया और जैन की दूरियाँ खत्म करने के बारे में सोच रहा था, तो वहीं अब प्रियल और उसका रिश्ता भी खतरे में नजर आ रहा था। प्रियल ने अलमारी से डिवोर्स पेपर निकाले और निक के पास आकर कहा, ना आप यूएसए छोड़ सकते हैं और ना मैं इंडिया। मेरे मन में आपके लिए कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग या नफरत नहीं है निक, ये समझ लीजिए मैंने आपको माफ भी कर दिया, लेकिन अब मैं यहाँ से वापस आपके साथ नहीं लौट सकती हूँ। बेहतर यही होगा कि आप इन पेपर्स को साइन कर दो, निक ने नम आंखों से कहा। प्रियल, अब तुम मेरे साथ जबरदस्ती कर रही हो, अगर आपको लगता है कि मैं जबरदस्ती कर रही हूँ तो लीजिए पहले मैं ये पेपर साइन कर देती हूँ।
निक को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि प्रियल क्या बोल रही थी, वो उसकी बात सुनकर हैरान खड़ा था।
प्रियल ने डिवोर्स पेपर पर साइन करके निक की तरफ बढ़ा दिया। प्रियल की बातों ने निक को इस कदर मजबूर कर दिया था कि उसे वो डिवोर्स पेपर साइन करने ही पड़े।
प्रियल ने कहा, थैंक्स, लीजिए जाकर सबमिट करा दीजिएगा।
सबमिट माई फुट, तुम यूएसए नहीं आ सकती और मैं इंडिया में नहीं सेटल हो सकता, तो मैं बीच का रास्ता भी निकालना अच्छे से जानता हूँ प्रियल। भले ही तुम्हारी जिद के आगे झुककर मैंने आज ये पेपर साइन कर दिए हैं, लेकिन ये पेपर्स तो क्या, कोई भी हमारे इस रिश्ते को नहीं तोड़ सकता।
निक गुस्से में वो पेपर लेकर चला गया और उसे घर के बाहर डस्टबिन में फेंक दिया।
निक के जाते ही मीरा भागकर बाहर निकल कर आई और वो पेपर वहां से निकालकर अपने घर ले गई।
मीरा ने पेपर्स पढ़ते हुए कहा, तो शोना अपनी वाइफ से डिवोर्स लेना नहीं चाहते हैं, तभी पेपर्स कोर्ट के बजाय डस्टबिन में फेंक दिए, लेकिन दोनों ने पेपर पर साइन कर दिए हैं, बस अब तो इनके सबमिट करने की देरी है। लगता है ये शुभ काम मेरे हाथों से ही होगा, मैं ही इन्हें सबमिट करवा देती हूँ।
मीरा ने सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर वो पेपर्स यूएस कोर्ट में सबमिट करवा दिया।